ओम शांति। आपका टॉपिक बहुत ही गुह्य टॉपिक है, इसके विषय में जितनी बात की जाए उतनी कम है। पूजा पाठ करना हमारी भारतीय संस्कृति में परंपरा रही है। हम सदियों से पूजा पाठ की प्रक्रिया अपनाते रहे हैं और इस प्रक्रिया में हम अपने देवी देवताओं से मनवांछित फल की प्राप्ति की आश रखते हैं। उनके प्रति प्रेम, उनके प्रति भावना, आदर सम्मान रखते हैं। लेकिन आज के समय में प्रायः यह देखा जाता है कि पूजा पाठ करने के पश्चात भी व्यक्ति असंतुष्ट है, उसको वो जो चाहता है वो नहीं मिल पाता है। तो इसका रीजन क्या है, उसकी कारण में हमें जाना होगा। पूजा पाठ हम अपने देवी देवताओं के आदर सम्मान के लिए करते हैं, भावना के लिए, हमारी भावना होती है सम्मान की, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम किसको पूजें, हमारे मन में ये भी प्रश्न होता है। मैं आपको एक अपना अनुभव बताता हूं। मैं बहुत ही भक्ति करता था, रामायण गीता का पाठ डेली करना, 10 प्रकार की आरतियां जिसमें शिव जी की आरती से लेकर राम जी की, कृष्ण जी की, मां दुर्गा की स्तुति, अनेक प्रकार की आरतियां, ओम जय जगदीश हरे, ये अनेक प्रकार की आरतियां हम करते थे। और जिस दिन भी एक आरती मिस हो जाती थी या एक जो हमारी दिनचर्या में शामिल था, अगर एक दिन भी मिस हो जाता था तो मन में भय रहता था, मन खाता था कि आज ऐसा नहीं हुआ, आज मैंने फलाने हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी या आज मैंने दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ी। इस प्रकार से हमारी भक्ति, हमारी पूजा पाठ हमारे लिए भय बन गई और परिणाम ये हुआ कि हम जो चाहते थे वो हमें नहीं मिलता था। तो धीरे धीरे भक्ति कम होने लगी। उम्र के साथ पढ़ाई का जिम्मेदारी बढ़ने लगी, धीरे धीरे भक्ति कम हो गई और एक समय ऐसा आया कि भक्ति आपे ही छूट गई। ऐसा लगता था कि कोई फायदा नहीं है, बस आरती की, अपनी एक बार अगरबत्ती जलाई और उसके बाद भगवान को नमन किया और अपना कार्य में लग जाते थे। कुछ समय पश्चात मेरा संपर्क इस ब्रह्मा कुमारी से हुआ, तो यहां पर मैंने 7 डेज कोर्स किया जिसमें मुझे आत्मा परमात्मा के बारे में सत्य परिचय मिला। तो जब हमें ये पता चला कि हमारे देवी देवताएं कौन थे जिनकी हम आज पूजा अर्चना करते हैं, मंदिरों में जिनके चेहरे को देखते ही हर्षित हो, देखते ही हमारा मन हर्षित हो जाता है, वो कितने जब ओरिजिनल में होंगे तो कितने दिव्य और सुंदर होंगे, इस प्रकार के विचार चलने लगे। और सबसे बड़ा जो भक्ति के बाद में जब ये इस ज्ञान में ये जाना कि परमात्मा शिव कौन है और शंकर कौन है, तो जब परमात्मा जो हम शिव मंदिर में जाके पिंडी पर दूध चढ़ाते थे, जल चढ़ाते थे, हर सोमवार का व्रत रखते थे, जब ये जाना कि ये निराकार परमात्मा ज्योति स्वरूप है और ये मेरा पिता है, तो मेरी भावना और अधिक बढ़ गई और मैं उस पिंडी को ज्योति रूप में, प्रकाश के रूप में देखने लगा। तो भक्ति का अर्थ होता है जुड़ना। तो वास्तव में हम परमात्मा से अभी तक जुड़े नहीं थे, हमने भक्ति की, हमने अपनी बात भगवान से कही, परमात्मा से कही, लेकिन हमने उसकी बात नहीं सुनी कि वो क्या कहना चाहता है, वो है कौन एग्जैक्टली। हम उसको अलग अलग रूपों में भी ढूंढते थे, कंफ्यूज थे। जिस प्रकार आपने कहा कि आप किताबें कौन सी पढ़ूं कौन सी नहीं पढ़ूं, तो ये कंफ्यूजन जो क्रिएट हुआ ये हमारे लिए अज्ञानता के कारण ऐसा हुआ। अब जब हमें सारा पता चल गया कि शिव कौन है, राम कौन है, कृष्ण कौन है, देवी कौन है, तो अब उनके प्रति हमारा आदर और बढ़ गया और वास्तव में असली ओरिजिनल भक्ति हमारी अब शुरू हुई। यानी हम उनसे अब जुड़ पाए, उनको जानना ही उनसे जुड़ना है। आज हम शिव को जब याद करते हैं तो हम उसको पिता के रूप में याद करते हैं। वे हमारे सर्वेश्वर हैं, उनके कर्तव्य क्या हैं वो हमको पता चल गए। वो सर्व आत्माओं के पिता हैं ये पता चल गया। उन्होंने हमारा तीसरा नेत्र खोल दिया, तीसरा नेत्र अर्थात आत्मा का ज्ञान हमें दे दिया। इस प्रकार के ज्ञान से हमारे जो भक्ति थी वो बेहद की होगी। तो हमें कोई विशेष क्रियाकलाप करने की आवश्यकता नहीं है। हम जो देवी देवता है उनके प्रति उनके जैसा व्यवहार करें। आज हम अपने को देवी देवताओं के वंशज कहते हैं, है ना, तो हम उनको कहते हैं, लेकिन आज कोई व्यक्ति अपने पूर्वजों की मर्यादाओं का पालन नहीं करे तो क्या वो उस कुल का कहलाने के लायक है? कदापि नहीं। तो हमें भी, हम देवताओं के वंशज हैं तो हमारे अंदर दिव्य गुण होने चाहिए, ये वो हमसे अपेक्षा भी रखते हैं। परमात्मा भी हमसे यह अपेक्षा रखता है कि हम उसने जो मर्यादाएं बताई हैं उनमें चलें। सबसे बड़ा हमारी भक्ति, हमारी भावना, हमारा समर्पण उनके प्रति, उनके प्रति आज्ञा का पालन, ये सबसे बड़ा आज्ञा पालन है कि हम विकृतियों से दूर रहें, जो कि हमारे शास्त्रों में बताई, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। इसके लिए कहा गया, काम क्रोध मद मानन मोहा, लोभन क्षोभन रागन द्रोहा, जिनके कपट दम्भ नय माया, तिनके हृदय बसों रघुराया। हम सिर्फ आरतियों में गाते थे, हम चौपाइयां रामायण की गाते थे, लेकिन आज समझ में आया इस दिव्य ज्ञान के द्वारा कि वास्तव में भक्ति क्या है। मात्र कर्म कांड करना, एक तस्वीर रख के उसको आरती करते रहना और उसके पश्चात हम साइड हो जाएं, उसे संबंध ही नहीं रखें, पूरे दिन उनको याद ही नहीं करें, तो ये तो हमारा आज की भक्ति स्वार्थ परायण होगी। स्वार्थवश हम आज भगवान को अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए कुछ न कुछ चढ़ावा चढ़ाते हैं, उनको भगवान को लालच देते हैं। तो अब ये समझना है कि भक्ति का अर्थ है जुड़ना, परमात्मा से जुड़ना, उनको निरंतर उनका साथ अनुभव करना, उनकी आज्ञाओं पर चलना, तब हमको प्राप्ति होगी। आज व्यक्ति खाली क्यों है? आज हताश निराश क्यों है? आज वो चाहता है वो क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि उसने मर्यादाएं तोड़ दी, उसने लक्ष्मण रेखाएं पार कर दी। लक्ष्मण रेखा अर्थात लक्षण रेखा। आज हम जो आरतियों में कहते हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी, तो क्या हम कभी सोचा कि वो पार ब्रह्म का रहने वाला, उससे मेरा क्या रिलेशन है और वो कैसा है? तो अब हमें इस ज्ञान के द्वारा पता चला कि पार ब्रह्म का जो परमेश्वर है वो परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप शिव है, और वो मेरा पिता है, वो सबका पिता है। इस भावना से बेहद का दृष्टिकोण हमारा बनता है और हम परमात्मा के साथ पूरे संसार के प्रति कल्याण की भावना भी हमारी जुड़ती है। तो भक्ति करना माना परमात्मा को याद करना, भक्ति करना माना देवी देवताओं के चरित्र को, उनके चित्र को ही नहीं उनके चरित्र को भी अपने अंदर बसा लेना, और उनके कुल के हैं हम ये सिद्ध करके बताना। असली भक्ति हमारी वो है। आप ये करें, निरंतर इस ज्ञान से जुड़े रहें। आगे आपको ज्ञान मुरलियां मिलेंगी, दिव्य वाणियां मिलेंगी, उनको पढ़ें और आगे भी आपके फंडामेंटल्स क्लियर होंगे। ओम शांति।